ஓம் சாந்தி. பரமாதரணிய ரமேஷ் பாய் ஜி கி கிளாஸ் அபி ஹம் சப் லோக் சுன் ரஹே தே ஔர் உஸ்கே த்வாரா ஹம் சப் சமஜ் சக்தே ஹை கி கித்னா குய்ய விசார் சாகர் மந்தன் கியா சதைவ் கர்த்தே ஹி ஹை ஔர் ஹம் சப் கே லியே ஏக் மார்க் பிரதர்ஷக் கே ரூப் மே கேவல் ஹம் லோகோ கோ நீ பல்கி பூரே யஜ்ஞ கே சாத் சாத் யஜ்ஞ கே லியே வி சதா மார்க் பிரதர்ஷக் ரஹே ஹை ஔர் ஹமே ஆஷா ஹை கி சதைவ் அந்த தக் ரஹதே ரஹேங்கே. ஆஜ் ஜோ மே பாத் ஆப்கோ பதானே ஜா ரஹா ஹூ, பிரஜாபிதா பிரம்மா பாபா ஜினோனே 18 ஜனவரி 1969 கோ தேஹ தியாக் கியா தா, கர்மாதீத் அவஸ்தா கோ பிராப்த் கர்கே ஜோ ஹம் சப்கி வி கா வி லக்ஷ்ய ஹை ஔர் ஹமே வோ பரம் சௌபாக்ய மிலா, உஸ் பாபா கி ஸ்திதி கோ தோ தின் தக் நிஹாரனே கா 17 அவுர் 18 ஜனவரி 1969 கேசே பாபா அவ்யக்த் ஃபரிஷ்தா ஸ்வரூப் கி ஸ்திதி கோ பிராப்த் கி பாபா நே, ஔர் கேசே அப்னே சதா கால கா ஜோ அப்னா பாக்ய ஹை உஸே புன பனா கர்கே ஹம் சப் கே லியே லைட் ஹவுஸ் பாபா பன் கயே. தோ ட்ராமா அனுசார் ஹம் 17 ஜனவரி கி சுபஹ பாபா கே பாஸ் யஹாம் மவுண்ட் ஆபு பஹஞ்ச் கயே. வைசே தோ பாபா சே கை பார் பஹலே மிலே ஹுவே தே, ஜப் சே ஜ்ஞான் மே ஆயே தே 1962 சே, கான்பூர் மே மில்னா ஹுவா, தில்லி மே மில்னா ஹுவா தோ பார், ஔர் இஸ் ரீதி சே பாபா கோ நிஹாரனே கா, சமீப் சே பாபா கோ தேக்னே கா, புருஷார்த் கோ ஜான்னே கா அனுபவ் மிலா. லேக்கின் உன் அந்திம் தோ தினோ மே ஜோ மிலா அனுபவ் வோ ஏக் அத்புத் பிரகார் கா ஹி தா. ஏக் தோ பாத் ஹம்னே யே அனுபவ் கரி இன் தோ தினோ மே பாபா சே லக்பக் 6-7 பார் மில்னா ஹுவா 17 அவுர் 18 ஜனவரி 1969 கோ. தோ பாபா கே சம்முக் ஜப் ஜாதே தே தோ பஸ் பாபா ஜரா திருஷ்டி தேதே தே ஔர் மன் கி பாத் துரந்த் ஜேசே பட் லேதே தே. பாபா கேதே தே கி அச்சா பச்சே யே பூச்னே ஆயே ஹோ, அச்சா ஐசா கர் லோ ஐசா ஹோ ஜாயேகா. யானி கி ஹமே ஏக் அக்ஷர் வி போல்னே கி ஜரூரத் நஹி படதி தி, ஔர் பாபா மன் கி பாத் கோ துரந்த் ஜான் லேதே தே. வைசே தோ பாபா சே பஹலே பதாயா ஜேசே கை பார் மிலே, பஹலே பாபா கோ டிடெயில் மே பதாயா கர்தே தே 1963-64 மே ஜப் மிலா கர்தே தே, ஜப் 66-67 மே மிலே தோ தோடி சி தோ தீன் லைன் கேதே தே ஔர் துரந்த் பாபா கேதே தே ஹாம் பாபா சமஜ் கயா. லேக்கின் இன் அந்திம் தோ தினோ மே பினா ஏக் அக்ஷர் போலே பி பாபா சப் பாத் ஜேசே ஜான் கர்கே ஔர் துரந்த் கேதே தே அச்சா யே பூச்னே ஆயே ஹோ ஐசா கர் லோ ஐசா, சன்ஷிப்த் மே பிரஷ்ன் பி பதா தேதே தே உஸ்கா சமாதான் பி. படா ஆச்சரிய ஹோதா தா ஔர் பாத் மே ஃபிர் அப்னே வரிஷ்டோ கே த்வாரா உஸ்கா உத்தர் பிராப்த் ஹுவா கி ஜப் ஆத்மா கி கர்மாதீத் அவஸ்தா ஹோதி ஹை தோ உஸ் சமய உஸ்கே அப்னே மன் கே சங்கல்போ கே ஊபர் சம்பூர்ண ரீதி சே விஜய பிராப்த் ஹோ ஜாதீ ஹை ஔர் ஜோ கேதே ஹை மன் ஜீதே ஜகத் ஜீத் இச்சா மாத்திரம் அவித்யா, ஜோ மன் கே ஹாரே ஹார் ஹை மன் கே ஜீதே ஜீத் வோ ஐசி ஸ்திதி பிராக்டிகல் மே ஆத்மா கி ஹோ ஜாதி ஹை. ஜப் அப்னே மன் கே சங்கல்போ பர் சம்பூர்ண விஜய ஹோ ஜாதி ஹை தோ தூசரே கே சங்கல்போ கோ வோ ஆத்மா துரந்த் பட் லேதி ஹை ஔர் உஸ்கா சமாதான் கர் தேதி ஹை. தோ ஹம் சப் கோ வி சூன்கி கர்மாதீத் பன்னா ஹை உஸ்கா ஏக் லக்ஷண் யே வி ஹை கி ஹமே அப்னே மன் கே சங்கல்போ கே ஊபர் சம்பூர்ண ரீதி சே விஜய பிராப்த் கர்னா ஹை इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। कोई भी इच्छा यानी संकल्प और कोई भी इच्छा अगर रही हुई होगी तो हम दूसरों की इच्छाओं को जान नहीं सकेंगे, और जब दूसरों की इच्छाओं को नहीं जान सकेंगे तो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कैसे कर सकेंगे। और बाबा ने ये स्थिति कैसे प्राप्त करी, तो बाबा ने, हम सब ने पढ़ा है, यज्ञ में सुना है कि जब शुरू में बाबा ज्ञान में आए तो बाबा ने जब ये देखा कि मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है बार बार, तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। और कैसे पत्र लिखा, उसकी कॉपी हम लोगों को मिली थी जो पुराने भाई बहन हैं, और सिंधी में लिखा था, उसका हिंदी में अनुवाद करके दादा आनंद किशोर होते थे, उन्होंने पत्र की कॉपी दी थी। तो हम सबको भी ये चेक करना है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करें। बाबा ने अपने मन को लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है और तुझे मेरे वश में रहना चाहिए मुझ राजा के, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, और तू जहां जहां मुझे ले जाता रहा मैं तेरे पीछे पीछे चलता रहा, मुझे तुमने बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित होता जा रहा हूं, हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। मन को ऑर्डर दिया बाबा ने। तो ऐसे ही हम भी देखें कि मैं भी जब मन चंचल होता है, भाग जाता है, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, अपने रीति से मन जब भाग जाता है, तो क्या मैं मन को ऑर्डर ऐसे करता हूं जैसे बाबा ने किया। और वो मन ऑर्डर कब मानेगा, जब पहले हम स्वस्थिति में, जैसे बाबा ने कहा, मैं स्वस्थिति की सीट पर स्थित होके अब तुझे ऑर्डर करता हूं। गवर्नमेंट में भी जो पॉलिटिशियन भी होते हैं, जब तक वो सीट पर है सब उसका ऑर्डर मानते हैं, और जब सीट से ट्रांसफर हो गया, रिटायर हो गया, या पॉलिटिशियन इलेक्शन हार गया, कोई उसकी बात मानेगा, नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो सीट पर नहीं है। ऐसे ही हम चाहते तो हैं कि मन हमारा वश में हो, मन जीते जगत जीत बने, लेकिन फिर भी हमारे चाहने पर भी मन चंचल हो जाता है, भाग जाता है। क्यों? क्योंकि पहले हम अपनी स्वस्थिति की सीट पर स्थित नहीं होते। तो पहले आप जो पुरुषार्थ सबसे मुख्य है उसके लिए, कि जब मन बहुत भाग रहा हो, हमें किसी शक्ति की आवश्यकता महसूस हो कि इस समय मुझे समाने की शक्ति चाहिए, इस समय मुझे सहन शक्ति की आवश्यकता है, बहुत मेरे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, तो पहले जो स्वस्थिति के जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा चिंतन, बाबा ने अनेक दिए हुए हैं, जो कल सूरज भाई ने भी बताया और हम सब जानते हैं, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, बाबा मैं वही कलप पहले वाली विजयी रतन हूँ, आपने ही मुझे माला का मणका चुना था, अभी भी आप मुझे माला का मणका बना रहे हो और कलप कलप में ऐसे बनती रहूंगी। अपने सब कॉन्शियस माइंड को, जो हमारा अर्थ चेतन मन है, उसको हम ये विजय के विचार बार बार दें, मैं विजयी आत्मा हूँ। ऐसे नहीं बाबा मुझे विजयी बनाओ, नहीं, कलप पहले भी बाबा ने, आपने हमें विजयी बनाया था, अभी भी मैं विजयी बन रही हूँ, मैं कलप कल्प की विजयी आत्मा हूँ। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, अर्ध चेतन अचेतन मन है, वो इस भाषा को ही समझता है। तो मैं विजयी आत्मा हूँ, वही इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, मैं राज सिंहासन पर बैठ करके, और फिर ये विजयी की बात अपने मन को कह रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। एक बाबा का ये देखा, और फिर उसके बाद कभी भी बाबा को उसकी आवश्यकता नहीं रही, मन बाबा के वश में हो गया। हम सबको भी मन ऑर्डर में करना है, विजय बनना है। तो पहला लक्षण ये बाबा का देखा उन अंतिम दो दिनों में कि बिल्कुल एक अक्षर बोले बिना भी बाबा मन की बात समझ जाते थे। दूसरी बात क्या देखी, वैसे बाबा को कई बार खांसी मतलब होती थी, उम्र भी थी और जनवरी का महीना भी था और वैसे भी 93 एज थी बाबा की, लेकिन और उस दिन 18 जनवरी की सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई क्योंकि बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं थी और बाबा आए क्लास में 18 जनवरी की सुबह, लेकिन योग ही कराया बाबा ने पूरा टाइम और एक भी अक्षर मुरली का नहीं चलाया। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के बाबा चले गए। और उस दिन शाम को रोज क्लास तो होती है लगभग 9:15 के करीब, 9 बजे पहले से, जब से साकार बाबा उस समय से ही ये नियम चला आ रहा है, लेकिन उस दिन बाबा ने पहले ही वो घंटी बजवाई और सबको अनाउंस करवा दिया आज बाबा क्लास जल्दी करेगा और लगभग 1.5 घंटा पहले ही सब लोग भोजन वगैरह करके क्लास में आ गए लगभग 7-7:30 बजे और बाबा भी क्लास में आ गए। और उसके बाद बस बाबा का स्वरूप तो बिल्कुल ऐसा था बस जैसे कि फरिश्ता स्वरूप हवा में जैसे चल रहे हैं, है तो साधारण वही वस्त्र वही सब कुछ, लेकिन ऑरा लाइट इतनी ज्यादा थी कि बस बाबा जब दृष्टि देते थे तो ज्यादा देर तक बाबा से दृष्टि भी लेना कठिन होता था, इतना जैसे 1000 पावर के बल्ब जल रहे हैं। बस थोड़ा बाबा का दृष्टि देने का ढंग भी बड़ा अच्छा था, न्यारा बस ऐसे दिया 2-5 सेकंड किसी के दृष्टि देते थे, फिर दूसरी तरफ दृष्टि हो जाती थी तीसरी तरफ, जिससे कि वो आत्मा इतने समय तक तो दृष्टि ले सके। और बस बाबा आए और उस दिन जो बाबा ने मुरली चलाई 18 जनवरी की रात को, उसमें बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, बिल्कुल गला साफ करने की भी जैसे जरूरत नहीं पड़ी। वो बाबा की टेप अभी भी मिलती है, सीडी मिलती है 18 जनवरी की रात्रि क्लास की, उसे सुन सकते हैं। अंतिम कर्मातीत अवस्था के समय बाबा ने ऐसे फ्लॉलेस मुरली चलाई और मुरली चला करके बाबा ने बस, हम सामने बैठे हुए थे बाबा की मुरली सुन रहे थे ऊपर हिस्ट्री हॉल में। तो देखो जब आत्मा की कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप स्थिति होती है तो क्या लक्षण होता है। हम सम्मुख बैठे थे, हमारे मन में विचार आया एक कि बस क्या ही अच्छा हो बस बाबा कुछ हमारे लिए बोले। अब क्योंकि हम सभी होते हैं यहाँ पर भी, कल बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाप दादा भी आते हैं, बस नयों के मन में आता होगा विचार कि मुझे भी अगर स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए। तो ऐसे ही उस समय बाबा के सामने 20-25 लोग बैठे होते थे, हिस्ट्री हॉल छोटा है पांडव भवन में, सबने देखा होगा। और बस हम बैठे, मन में विचार आया और विचार आने की देर भी नहीं हुई, अब बाबा तो कर्मातीत मन जीते जगत जीत स्थिति को प्राप्त कर चुका था, तो संकल्प हमारा हुआ और तुरंत 1 सेकंड में बाबा तक पहुंचा हो। और तुरंत ही बाबा ने बस महावाक्य उच्चार दिया हमारा नाम लेके, और इस रीति से वो हमारे जीवन के लिए सदैव के लिए गाइडलाइन बन गए। तो मुख्य बात क्या है कि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और जब हमारी ये स्थिति हो जाएगी तो जो हमारे जिनके हम इष्ट देव हैं, जो हमारे भक्त हैं, जैसे भाई साहब अभी बता ही रहे थे कोई प्रजा का पद और कोई अप टू विश्व महाराजन लास्ट फर्स्ट पद, ऐसे ही बाबा कह रहा है हम अपनी प्रजा भी तैयार कर रहे हैं और भक्त भी तैयार कर रहे हैं। अभी भी मंदिरों में जो भक्तों की भीड़ लगती है, वो मूर्तियां जो है वो हमारी आपकी ही तो मूर्तियां हैं, भले अभी हमें मालूम नहीं है लेकिन हम बच्चों की ही वो मूर्तियां हैं। और जब हमारे जड़ चित्रों के आगे आके वो इतनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव करते हैं, तो जब हम चैतन्य में अवर हैं तो हम अपने भक्तों की क्या इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। और वो ही अनुभव हुआ, हमें संकल्प आया, बाबा तो हम सबके इष्ट देव श्री कृष्ण भक्ति मार्ग में कितने उनकी पूजा की होगी, और साकार में सतयुग से लेकर तो उनके साथ ही साथ भिन्न भिन्न नाम रूप में पार्ट बजाया। तो चैतन्य में यहाँ पर भी हमारे इष्ट देव जो है उनको हम तक हमारे संकल्प पहुँचते हैं और बस उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है। भक्ति मार्ग में भक्त अगर कोई इच्छा रखता है भगवान की साक्षात्कार की या कोई चीज की कामना, तो भगवान के मुंह से क्या निकलता है, हैं? कौन सा शब्द? तथास्तु। बस हमारे मन में हुआ और भगवान के मन में भी तथास्तु, क्योंकि शिव वो ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा समान पूरे बन बाप दादा बोलते हैं। और आप सबने भी पढ़ा होगा जब सूक्ष्म वतन में संदेशियां जाती थी तो पहले उन्हें बहुत अंतर दिखता था लाइट का, साकार ब्रह्मा बाबा और सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाबा का। भले शक्ल सूरत एक जैसी थी लेकिन लाइट का डिफरेंस। लेकिन जितना जितना समय बीतता जा रहा था और बाबा बीच बीच में पूछते थे तो संदेशी यही बचाती थी, बस बाबा थोड़ा सा बस लाइट का फर्क है, बाकी सब बिल्कुल आप और वो बाबा समान है। और मैं तो 18 जनवरी को यही था जब बाबा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद दादी प्रकाशमणि जी ने संदेशी को भेजा वतन में। तो पहले तो संदेशी को बाबा खींचे ही नहीं, संदेशी गई भी तो अंधकार जैसा थोड़ा लगे। और जब संदेशी गई और बस वो देख रही थी कि हमेशा वहां पर बाप दादा जब दिखते थे तो कौन सा शिव बाबा का आकारी तन में है और कौन सा ब्रह्मा बाबा का, क्यों? क्योंकि दोनों की लाइट बिल्कुल एकदम समान जैसे हो गई। हम सबको भी वही स्थिति प्राप्त करनी है, हम सबके भी संपूर्ण स्वरूप जैसे सूक्ष्म वतन में हमारा आवाहन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और इस रीति से अभी भी यहाँ पर हमारे जड़ चित्रों के आगे लाइन लग रही है, तो यहाँ पर चैतन्य में तो हमें अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करनी होगी, भले मालूम नहीं है, हमारे सामने आते हैं। इसीलिए बाबा कहता है सदा दाता बनो, कोई भी भक्त आए वो कुछ न कुछ ले करके जाए, खाली हाथ न जाए। सो शांति प्रेम आनंद सद्भावना शुभ चिंतन कोई भी बात, बस आए और हमारे सम्मुख आके अपनी इच्छा की तृप्ति का अनुभव करके जाए। तो एक तो ये उस दिन देखा 18 जनवरी की रात्रि क्लास में बाबा तक संकल्प पहुंचा और बाबा ने महावाक्य उच्चार दिए। उसके बाद बाबा मुरली चला करके एक बार भी खांसी भी नहीं आई, जो इस बात का प्रतीक है क्या कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी तो शरीर के सब कर्म भोग के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। और क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चों के सामने पेपर तो बहुत आते हैं आएंगे, लेकिन अभी दो पेपर मुख्य हैं, एक है शरीर का पेपर, दूसरा है परिवार का पेपर। तो इसलिए शरीर का पेपर जो है ना वो सबके सामने आना है। युवा लोग ये ना समझे जो युवान है कि हम तो यंग है, हमें कोई बीमारी या उसका पेपर नहीं, भले शरीर इस अंतिम जन्म में हमारा जवान है लेकिन आत्मा तो 84 जन्मों की वो बूढ़ी हो गई है। 84 जन्म भोगते तो अनेक जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब वो शरीर के द्वारा चुकतू अवश्य होना है, क्योंकि ये हमारा सबसे निकट का साथी है। और इसमें जो व्याधि होगी कष्ट होगा उसको तुरंत आत्मा एकदम अनुभव करेगी इस कारण से। लेकिन जब कर्मातीत अवस्था होगी उससे कुछ समय से पहले से ही शरीर के ऊपर किसी भी व्याधि का अनुभव नहीं होगा। व्याधि होगी, रोग होगा, दर्द होगा, लेकिन दर्द की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा बिल्कुल जैसे न्यारी और प्यारी। ये बाबा का उस दिन देखा, एक बार भी खांसी भी नहीं आई, गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद बाबा उठे और उठ करके बाबा गए, एक कदम गए, फिर बाबा मुड़ के फिर बच्चों को दृष्टि देने लगे। बस बाबा को ये हो आज मैं बच्चों को भरपूर कर दूं। फिर बाबा एक कदम और आगे बढ़े, फिर रुके, फिर मुड़ के फिर दृष्टि देने। यानी कि ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को ये हो कि आज ये साकार में मेरा अंतिम मिलन है और इस साकार रथ के द्वारा मैं बच्चों को भरपूर कर दूं। और बाबा के सामने वही बच्चे नहीं होते थे जो सामने, कल भी बाबा ने कहा ना, दूर बैठे भी, आज भाई सब भी वो बता रहे थे ना, तो दूर बाबा हमेशा कहते थे साकार में कि मेरे सामने यही बच्चे नहीं है जो सामने बैठे हैं, बल्कि विश्व की समस्त आत्माएं मेरे सम्मुख हैं और उनको सम्मुख रख के बाबा मुरली चला रहा है। इस तरह बाबा कहते हुए और बस दरवाजे पर गए, दरवाजे पर बाबा ने बस बच्चों को भरपूर करके करा। फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं कहे। उस दिन ही भीष्म पितामह को जैसे कि इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, ऐसे ही जब हमारी कर्मातीत अवस्था होगी तो हम अपनी इच्छा से जैसे शरीर छोड़ देंगे, भले कोई ना कोई कारण निमित्त बनेगा और लेकिन हमें आभास हो जाएगा और बस हमारी स्थिति ऐसी होगी, अंत मते सो गते तभी होगी हमारी, जब अंत में हमारे कोई विचार संकल्प विकल्प कुछ नहीं होंगे, बस मैं और बाबा, और वो इच्छा मृत्यु ही होगी तभी हमारी अंत मते सो गति होगी, हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे। अगर मानो प्रकृति के द्वारा हमारी मृत्यु हो गई, अर्थक्वेक आया, ये एकदम बिल्डिंग हिली, ऊपर से छत गिरी, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई होगी, और ऐसे में ना योग का वातावरण, याद का, कहीं किसी का फ्रैक्चर हो रहा है, कहीं खून बह रहा है, तो ऐसे में अगर शरीर छोड़ा तो वातावरण जैसा होगा वो हमें अपनी तरफ खींच लेगा। या तो ऐसी स्थिति हो कि इंसाफ से एकदम आत्मा न्यारी हो जाए। और ये बाबा का देखा कि बस कैसे बाबा ने ये छुट्टी ली, बाबा बच्चों से विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, ये शब्द बोले बाबा ने। और बाबा अपने कमरे की तरफ गए और फिर हम सब ने सुनाई है कई बार की दादी जी के हाथों में हाथ और नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने एकदम छुट्टी दी, बस देह त्याग किया। तो एक ये हो कि हम अपनी इच्छा से तभी देह त्याग कर सकेंगे, कर्मातीत अवस्था जो बाबा की देखी आंखों में, बिल्कुल वैसे भी मृत्यु के नाम से ही मनुष्य को भय लगने लगता है, लेकिन बस बाबा का ये स्पष्ट पता चल रहा था बाद में, पहले तो पता नहीं चलता, हद में रहते हैं हम, बाबा का वही चमकता चेहरा, वही मुस्कान, बच्चों से अपने सब बच्चों से नैन मुलाकात करते हुए बाबा गए और दादी के हाथ में हाथ छुट्टी ली। तो ना तो मृत्यु का भय हो, ना उसके कारण से कोई देहधारी, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई की स्मृति हो। जब ऐसी स्थिति होगी उसी को ही जो कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप अवस्था, विदेही स्थिति कहा गया, और उस स्थिति में ही हम विश्व महाराजन की का पद प्राप्त कर सकेंगे। तो एक बाबा की ये बात देखी। तीसरी बात, और क्योंकि जो बाबा की कर्मातीत अवस्था की स्थिति देखी, हम सबको ही पालन करनी है। बाबा जब भी पहले पार्टियों से मिला करते थे ना, तो पार्टियों का टाइम होता था कि भई अभी 10 बजे कलकत्ता पार्टी मिलेगी, 10:30 बम्बई, 11 बजे दिल्ली पार्टी, आदि आदि। तो जब ब्राह्मणी जाती थी बाबा के पास, बाबा तीन स्थान पे अक्सर मिला करते थे, या तो बाबा अपने कमरे में, तब बाबा का कमरा बड़ा छोटा था, आप सबने देखा अभी तो बड़ा है, पहले बाबा का कमरा जहां तक पलंग है पड़ा हुआ और पीछे जो दरवाजा है बस वहीं तक का ही कमरा था बाबा का, तो वहां पर मिला करते थे बाबा, या झोपड़ी में मिलते थे, थोड़े ज्यादा लोग होते थे, 7-8 लोग अगर हुआ करते थे, या फिर 12-15-20 होते थे जो बहुत बड़ी पार्टी समझी जाती थी, तब हिस्ट्री में हॉल में मिलते थे। लेकिन बस पार्टी आने का समय हुआ, बाबा इंतजार बस देह में है, आंख खुली हुई है, ब्राह्मणी आई, बाबा मैं पार्टी फलाना पार्टी, बस जैसे बाबा को देह से आंख खुली है, कोई ध्यान में भी नहीं है, साक्षात्कार नहीं, कुछ नहीं, लेकिन विदेही स्थिति अशरीरी। तो जब ब्राह्मण याद बाबा बाबा, तो थोड़ा बाबा को कभी कभी जर्क जैसा ना एकदम, अच्छा बच्ची आ गए, पार्टी को लाओ, कहाँ है पार्टी। तो बाबा जैसे यहाँ होते हुए भी देह से न्यारी स्थिति में होते थे, और उसके बाद पार्टी आती थी, बाबा मिलते थे, और सबसे बड़ी बात यह होती थी बाबा से जब मिलते थे, अगर ओ बाबा हाथ फर, आओ बच्चे, और ऐसे, और बाबा के बस चुंबक की तरह खींचते हुए चले आते थे, मैग्नेटिक पुल ऐसा होता था। और उसका सबसे बड़ी बात यह होती थी कि जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी या बाबा की बाह में आए, तुरंत विदेही हो जाते थे, अशरीरी, बिल्कुल देह का भान नहीं। और उसका अनुभूति कब होती थी, बस थोड़ी कुछ सेकंड, 30 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट के बाद बाबा ऐसे थपथपा, हाँ बच्चे आओ आओ, जैसे बाबा देह में। फिर कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन आत्मा विदेही स्थिति का जब अनुभव करती है, फिर बाबा ऐसे करके बस देह में ला के फिर टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे नाम, और उसके बाद एक जाता था, फिर दूसरा आता था, फिर दूसरे को भी, हर एक को ये अनुभव होता था अशरीरी स्थिति का। क्यों? क्योंकि बाबा ने आत्मा का पाठ इतना पक्का कर लिया था, आप सबको मालूम है ना, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण, लिख लिख करके बाबा ने ऐसे पक्का कि जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी, दूसरा विदेही हो जाता था। अब बाबा यही हम बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि हम आत्माओं की भी ऐसी स्थिति हो, कम से कम ये पहला पाठ इतना पक्का हो कि जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आए, जिसको दृष्टि दे, कोई भी आत्मा एकदम खाली ना जाए, एकदम ऐसे विदेही हो जाए, और उसके बाद फिर जैसे देह में आकर के हम अपना कारोबार करें। यानी कि देह में आना और देह से न्यारा होना, ये हमारे हाथ में हो। ये बाबा को इतनी परफेक्ट प्रैक्टिस थी। हम लोग देखा करते थे कि बस जाते थे और बाबा कैसे देह में आए, मिले, फिर बाबा विदेही हो जाते थे। तो अंत समय जो शरीर का भी पेपर आएगा, वो शरीर के पेपर में फुल पास होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि देह में आने का और देह से न्यारा होने का ये अभ्यास हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये तभी होगा, बस धीरे धीरे हम लोग इस स्थिति में ना, बस मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ, निराकारी हूँ, देह से न्यारी हूँ। क्योंकि बड़ी दीदी को हम, दादी जी को, प्रकाशमणि दादी जी, जब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी दादी के, तो दादी के पास जाते थे, डॉक्टर लोग कहते थे दादी आपको तो बड़ा दर्द हो रहा होगा शरीर में, ये दवाई दी है, इतने इंजेक्शन दिए हैं। दादी कहती थी नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी लगता ही नहीं। क्यों? क्यों? बस जब भी मुझे थोड़ा भी ये आवाज होता है, मैं देह से न्यारी हो जाती हूँ, इस बात को मैं ये करती हूँ रिपीट, और देह से एकदम न्यारी हो जाती हूँ, बिल्कुल देह में दर्द का अनुभव नहीं होता। तो ऐसे ही यही बाबा का स्थिति थी। यही पेपर तो सबके सामने आना है, जो बाबा ने कहा देह का पेपर है, बीमारियों का, बहुत जन्मों का पेपर, हिसाब किताब का है, आएगा। इसलिए देह से न्यारा होने का, जब चाहे न्यारे हो जाए, जब चाहे देह में आ जाए। तीसरा ये बात बाबा का जो देखा, और ये ऐसी बात थी, है हम सब बच्चों के लिए, जो हम सब के लिए आई ओपनर है, आंख खोले। और चौथी जो मुख्य अंतिम बात है, बाबा ने शरीर 18 जनवरी को छोड़ा, और जब जगत जीत बोलते हैं, मन जीते जगत जीत, तो जगत में क्या आता है, केवल हम आप मनुष्य ही नहीं आते, मनुष्य भी आते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु और प्रकृति, 5 तत्व जिनका हमारा ये शरीर बना है। हमें याद आता है जब भोग लगता था ना, तो बस एक चिड़िया थी, वो हमेशा हर गुरुवार को आया करती थी, बाबा अभी उसे बड़े प्यार से करके आओ आओ बच्ची आओ, चिड़िया के लिए बच्ची शब्द बाबा का, बस उसको भी भोग वगैरह दिया, वो खाती थी, उसके बाद वो चली जाती थी। लेकिन हमेशा जब भी भोग लगता था वो समय पर आ जाया करती थी। और 18 जनवरी जब बाबा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद वो देखा, जिस दिन अव्यक्त रूप से वो हुआ, बस वो आई और बस देखते रहे। और उसके बाद यानी कि पशु पक्षी जीव जंतुओं को, आपने वो भी दृष्टांत सुना होगा, एक बार मधुबन में सांप निकला था तो बस सब लोग दौड़े मारने के लिए, तो हमारे एक बलदेव भाई होते थे जयपुर के, तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे मारो नहीं मारो नहीं, इसे पकड़ के एक उसमें डाल दो मटके में। तो थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि भाई सांप है और ये तो कोई सोच नहीं। बाबा ने कहा, अरे बच्चे लाओ लाओ लाओ, बाबा जाता है। बाबा ने कहा, तो नहीं नहीं बाबा हम जाते हैं। और वो बस उन्होंने पकड़ा पूछ से, बिल्कुल सांप जैसे एकदम पालतू टाइप का, बिल्कुल कुछ भी उसने विरोध नहीं किया, उसको पकड़ा डाल दिया मटके में, ऊपर से बांध करके उसे छोड़ाया। जो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि भाई सन्यासी ऋषि मुनि जो पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा होते थे, जंगल में शेर भी आ जाता था और बहुतों की जीवन कहानियां हैं, तो ये प्रत्यक्ष देखने को कई बार बाबा के सामने ऐसा मिलता था, कोई भी ऐसा आता था, प्रेम से स्नेह से कैसे वो वशीभूत हो जाते थे। तो बाबा ने जिस दिन शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, रात को शरीर छोड़ा, 18 जनवरी पूरी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 तारीख का सारा दिन, 20 की रात और 21 तारीख को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, क्योंकि चारों तरफ से सब बच्चे आ रहे थे, सबके टेलीग्राम टेलीफोन आ रहे थे, रखो शरीर हम आ रहे हैं। और बड़ी दीदी भी बाहर थे, दीदी मनमोहनी जी। तो जब 21 तारीख को आए तब शरीर का संस्कार, लेकिन लगभग 65 घंटे तक शरीर रखा रहा, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, लेकिन वैसे ही बाबा का शरीर एकदम चमकता हुआ, गोरा रंग बिल्कुल, कुछ काला नहीं पड़ा और न कोई दुर्गंध आई। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग शरीर लेकर के शांति स्तंभ जहाँ है आजकल, उस जगह बाबा का अग्नि संस्कार किया गया था, अंतिम संस्कार, तो जब लाया गया शरीर तो शरीर बिल्कुल काफी हद तक जैसे थोड़ा फ्लेक्सिबल था, नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ के जाती है तो एकदम शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। हाँ थोड़ा बहुत उसमें ऐसा हुआ होगा, लेकिन बिल्कुल जैसे काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी थी, गोरा रंग, कोई दुर्गंध नहीं। ये प्रतीक है इस बात का, बाबा ने कैसे 5 तत्वों के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ली थी पूरा। यही बाबा अभी हम बच्चों से कहता है, प्रकृति के तत्वों को रोज योगदान करो, प्रकृति के तत्वों को, क्योंकि ये प्रकृति के तत्वों से ही तो बना हमारा शरीर है। और ये प्रकृति का साथ सतयुग के आदि से लेकर जो अंतिम जन्म है तब तक ये अनेक नाम रूपों में, अलग अलग नाम रूपों में ये साथ देता है। तो इस कारण से अपने आत्मा को तो हम पवित्र बना रहे हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा सब कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के तत्वों को प्रतिदिन योगदान करना कभी न भूले। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रकृति जीत नहीं बने हैं तब तक हम संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रकृति जीत बनने के लिए एक तो ये आवश्यक है कि प्रकृति के तत्वों को रोज योगदान करें, और दूसरा ये आवश्यक है कि प्रकृति के तत्व जो है ना, उनको हम अपना मित्र बना लें। मित्र बनाने का भाव यानी उनके जो संस्कार हैं, उनके संस्कारों से हम अपने संस्कारों को मैच कर दें। केवल एक पॉइंट इसमें बताएंगे एक एक, मानो जल तत्व है। अब बाबा ने कहा है जल बहुत उछाल खाएगा, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, इतनी बारिश होगी, बहुत लोग मरेंगे, तो ऐसी मृत्यु हमें तो स्वीकार नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं हम इच्छा मृत्यु का वरदान हो, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। तो जल तत्व को अगर हमने अपना मित्र बनाया होगा तो जल मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, प्राण नहीं लेता। मित्र हमेशा मित्र की रक्षा करता है। तो जल का सबसे बड़ा संस्कार क्या है, क्या गुण है? शीतलता तो है ही, साथ में एक जल का संस्कार है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जैसा चाहो वैसा स्वरूप ले लेता है। अब इस गिलास में रखा है, गिलास के स्वरूप में, थाली में डाल दो थाली का आकार ले लेगा, इवन चम्मच में लो चम्मच में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो तो कटोरी में। तो ऐसे ही हमारे भी संस्कार ऐसे फ्लेक्सिबल हो, हर आत्मा के साथ हम मिल करके चल सके। ऐसा न हो कि भाई इस सांस के साथ मिल करके बड़ा मुश्किल है संस्कार चलाना, इसके आनंद के साथ सहज है, या फलानी आत्मा के साथ ऐसा है। नहीं, हर आत्मा के साथ हमारे संस्कार सेट हो सके तो जल कभी भी हमारे दुख का मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। अंत समय में भी जल हमारी संपूर्ण रीति से सहायता करेगा कर्मातीत बनने में। ऐसे पृथ्वी का बड़ा गुण क्या है? हाँ, सहनशीलता, वो तो है, लेकिन पृथ्वी दाता है। पृथ्वी में देखो, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाएंगे। पृथ्वी है, पानी भी देती है, अनाज भी, फल फ्रूट पेट्रोल हर चीज पृथ्वी देती है। ऐसी पृथ्वी के हमने गुण धारण किए होंगे, हम भी दाता बन जाए। जो आत्मा सम्मुख आए, कोई भी खाली हाथ, अभी तक भी देखो मधुबन का ये विशेष गुण है, जो भी आता है डेलीगेट, कोई ना कोई उसे स्थूल रीति से सौगात दी जाती है। ये हमारी ही यादगार है, हम ब्राह्मण बच्चों की, कि हम ब्राह्मणों ने इस संगम युग में ऐसे दातापन का पार्ट बजाया था कि जो भी आत्मा आती है वो खाली हाथ नहीं जाती, उसी की यादगार आजकल स्थूल रूप में आज तक मधुबन में भी चली आती है। तो हमारे सामने भी जब कोई आत्मा आए, स्थूल चीजों की तो लिमिट हो सकती है, भाई पैसा है, खाना है, कपड़ा है, अनाज है, लेकिन नहीं, बस हमारे वाइब्रेशंस, हमारा ऑरा, हमारी प्रेम की भावना, हमारा स्नेह, हमारा सहयोग, जिसमें कोई खर्चा भी नहीं होता, ऐसे हमारे वाइब्रेशन ऑफ फीलिंग हो, हर आत्मा ये महसूस करके जाए मैं भरपूर होके जा रही हूँ। ऐसे ही वायु का क्या गुण है? तो क्या अर्थक्वेक, अगर पृथ्वी का ये गुण धारण करा होगा तो पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड आएंगे, जितने आएंगे वो कोई भी हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते, भले जितने अर्थक्वेक आए, भूचाल आए। लेकिन बाबा ने कहा है कि मेरे बच्चों के पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, क्योंकि पृथ्वी को हमने अपना मित्र बना लिया, वो हमारे मन में वो ही विचार टच करेगी जहां पर सेफ्टी होगी। पूरा सारी दुनिया हलचल में होगी लेकिन हम अचल होंगे, और ये तभी होगा जब धरती के गुण को हमने धारण किया होगा। ऐसे पृथ्वी, अमेरिका में देखो कितने साइक्लोन आते हैं, सब तरफ साइक्लोन आते हैं, अभी भारत में भी वो हुड हुड आया था और विशाखापट्टनम की तरफ, और ये आएंगे। लेकिन हवा का गुण अगर हमने धारण किया होगा, वायु का कौन सा गुण है? हल्कापन। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है, गुरुत्वाकर्षण, वायु हल्का। ऐसे ही अगर हमने हल्केपन का गुण धारण किया होगा, कोई भी परिस्थिति हो हम भारी ना बने, बस। नहीं तो कई बार भारी हो जाते हैं तो स्थिति खुद इतनी भारी हो जाती है, खुशी गायब हो जाती है। तो इसीलिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हमारी, कि जिसके कि अंदर हमारा हल्कापन हम सदा अनुभव करते रहे। और हल्केपन के साथ चौथा कौन सा तत्व है? अग्नि, मानो सूर्य का। क्या सूर्य का गुण है? अग्नि का क्या गुण होता है? अग्नि का गुण होता है, अग्नि में कोई भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही बाबा ने कहा, आपकी ज्वालामुखी स्वरूप की अग्नि ऐसी जली हुई हो, रोती हुई आत्मा आए, बस सम्मुख आए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। वो तब होगा, हम उसका रूप परिवर्तन तब कर सकेंगे जब हमने खुद भी ज्वालामुखी रूप योग अग्नि जलाई होगी। अब पांचवा तत्व आकाश, क्या गुण है आकाश में? विशालता। आकाश के कारण ही उसमें सैटेलाइट छोड़े हैं, टीवी काम करता है, मोबाइल काम करता है, कम्युनिकेशन बातचीत एक दूसरे से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन हर आत्मा के साथ, ऐसा नहीं कि इस आत्मा से मेरे संस्कार मिलते हैं इसके साथ तो हम बहुत घंटों तक बात करते रहे और जिस आत्मा से नहीं बनती है वो सामने भी आए हम नजर बचा के निकल जाए, उसको दृष्टि न दे, ऐसा नहीं। विश्व महाराजन का हर आत्मा से संपर्क होगा। अगर एक भी आत्मा ऐसी है जो हमारे लिए अशोभनीय है, हमारे साथ उसके संस्कार नहीं मिलते, हम उसे दृष्टि नहीं देते, उसके साथ बात नहीं करते, एक भी आत्मा है तो हम विश्व महाराजन कभी नहीं बन सकते। तो ठीक है, इस तरह पांचों तत्वों का अगर हमने मित्र बना लिया होगा, और बाबा ने जो देखा ना किस तरह मित्र बनाया, पांचों तत्वों ने अंत तक साथ दिया, तो हम सब आज यही संकल्प लेके उठे कि बाबा की तरह हम सबको भी कर्मातीत बनना है, और बाबा हम आपके साथ आए कि आए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बना